प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, भाग छठा, लेक्चर नंबर 473। ओम नमः सिद्धे श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये छठी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 75 पर आ गए 75। कल हमने 132 नंबर की गाथा पढ़ी थी, टीका शुरू की थी, फिर दोबारा लेते हैं। देखो अनवेयर से देते, केवल गुजराती ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, मिला ना। वर्ण रस गंध ने स्पर्श ए गुणों, सूक्ष्म थी मांडीने ने सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत ना सर्व पुद्गल ने होय छे, यानी सभी बड़े बड़े स्कंधों तक सबको होता है, यानी ये पुद्गल के गुण है। परमाणु से लेकर बड़े स्कंधों तक सबके ये पाए जाते हैं, परंतु शब्द ये पुद्गल का गुण नहीं है, वो स्कंध है तो पर्याय है, द्रव्य पर्याय जिसको कहेंगे। तो विविध प्रकार नो शब्द ते पुद्गल अर्थात पौद्गलिक पर्याय छे, उसको पुद्गल कहेंगे क्योंकि वो स्कंध है, और बाकी जो है स्पर्श रस गंध वर्ण ये तो गुण है। अब टीका पढ़ते यहां से शुरुआत से अमृत चंद्राचार्य की टीका। स्पर्श रस गंध ने वर्ण इंद्रिय ग्राह्य छे, यानी इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, कारण के तेओ ने स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वे इंद्रियों ना विषयो छे। इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना जाता है उसको जो गेय है उसको हम इंद्रिय के विषय कहते। तेओ इंद्रिय ग्राह्य पनानी व्यक्ति अने शक्ति ने वशे, यानी वो तो शक्ति है उसमें इंद्रिय के द्वारा जाने जावे, परंतु वो व्यक्त होवे ही ऐसी बात नहीं है। तो कहते व्यक्ति यानी वो प्रकट है और शक्ति यानी उसमें इंद्रिय के द्वारा जाने जाने की उसमें शक्ति पड़ी है। तो इंद्रियों वड़े भले ग्रहाता होए के न ग्रहाता होए, व्यक्ति यानी ग्रहाता होए यानी जाने जाते हैं, और शक्ति रूप है परंतु व्यक्त नहीं होते, हम कहते नहीं जाने जाते हैं, ग्रहण नहीं होते, तो पण फिर भी ते वो एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्याय रूप परमाणु थी मांडीने, क्या कहते हैं, एक द्रव्यात्मक करते थे सिंगल परमाणु, तो सूक्ष्म पर्याय रूप परमाणु थी मांडीने एक परमाणु से लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय। देखो ये सूक्ष्म पर्याय और स्थूल पर्याय कहा, हमने स्कंधों के या पुद्गलों के भेद देखे थे, आपको याद हो गए कौन कौन से, स्थूल स्थूल से, हाँ हाँ तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो परमाणु जो है, देखो दो जगह दो अलग अलग अपेक्षा से बात, जब स्कंधों के भेद करेंगे तो सूक्ष्म सूक्ष्म में दो परमाणुओं का स्कंध लेंगे, जब वे पुद्गल के भेद कहेंगे तो एक सिंगल परमाणु को वो सूक्ष्म सूक्ष्म कहेंगे, यही कहा है, एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्याय रूप परमाणु, ये सूक्ष्म सूक्ष्म वाला भेद है पुद्गल का। हम वो बांसवाड़ा गए थे ना ध्रुवधाम, वहां इन्होंने लिए थे वो पुद्गल के जो भेद, ये स्कंधों के भेद देखे थे, तो एक तो विद्यार्थी ने वो तो तत्वार सूत्र निकाल कर बताया, यहाँ तो पुद्गल परमाणु लिया और आप तो दो परमाणु के स्कंध को कहते हैं, हाँ तो वहां बताया कि हम जो बता रहे वो स्कंधों के भेद बताए और यहाँ जो बताए वो पुद्गल के भेद है, पुद्गल में परमाणु भी आ गया,
वो तत्वार सूत्र में
तत्वार सूत्र पुद्गल के भेद ऐसा लिखा है
और हमने स्कंधों
के भेद दे बताए, यानी कोई विरोध तो है ही नहीं है, जब स्कंध कहेंगे तो छोटे में छोटा स्कंध कौन सा होगा, दो परमाणुओं का स्कंध, पुद्गल में परमाणु सबसे सूक्ष्म है, स्कंधों में स्कंध का अर्थ क्या है, अनेक परमाणुओं का मिला जुला जो है उसका बंध हुआ है, तो उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म में किसको लेंगे हम, दो परमाणुओं के स्कंध को सबसे छोटा, ये सूक्ष्म में सूक्ष्म, और भी हो गए उसके पर मिनिमम पॉसिबल दो का, दो दो परमाणु का स्कंध लेंगे। यहाँ क्या कहते हैं, आप कुछ कह रहे थे,
ऐसा है कि वो लड़के ने ऑब्जेक्शन लिया था क्योंकि सब विद्यार्थी थे, मतलब जिसको कहते हैं ग्यारहवीं से लेके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, इस
वहाँ जैसे जयपुर में है ना महाविद्यालय, वैसे वहाँ डिग्री
वहाँ पर भी विद्यालय, हाँ। तो एक ने ऑब्जेक्शन लिया, आप गलत बता रहे हैं, तत्वार सूत्र में ऐसे बताए, हमने कहा आप लेके आओ अभी है तो दिखाओ, तो दूसरे पीरियड में लेके आए, उस समय तो वो भी आए थे गैहट जी,
हाँ।
और बहुत सारे मतलब लोग कहे ये तो सिद्धांत प्रवेशिका सिखाने वाला है, ये ऐसा मन में, जब हमने बताया दिखाओ तो उसने बताया ये देखो तत्वार सूत्र में ऐसा लिखा, मैंने कहा उसमें क्या लिखा है, पुद्गल के भेद, और हम बोर्ड पे सिखाते हैं ना, तो बोर्ड पे लिखा था तो स्कंदों के भेद, तो सबको ऐसा लगा कि अरे ये सही बता,
विरोध कुछ है ही नहीं है, तो हाँ। एकाध यानी थोड़ा सा पॉइंट होता है, मगर उसको गौर करेंगे तो समझ में आता है कि क्यों ऐसा कहा,
नहीं लोगों को तो पहले लगता है ये क्या सिद्धांत प्रवेशिका सिखाएंगे, और बहुत लोग ना बोलते हैं, हाँ फिर भी हम तो अपनी चाल छोड़ते नहीं, सुनने के बाद तो फिर सीधे हो जाते,
नहीं पर वहां से शुरुआत है, जिसने वो पढ़ा है ना वही पक्का हो
जाता है। नहीं मैं क्या कहता हूँ, उस समय सब लोग इतने कन्विंस हो गए, दूसरे दिन से गर्दी बढ़ गई।
देखो क्या कहते हैं, फिर से सेकंड लाइन है टीका की, ते वो यानी वो स्पर्श गंध वर्ण जो है वे, वो जो गुण है वे इंद्रिय ग्राह्य पणानि यानी इंद्रिय के द्वारा जाने जावे ऐसी उनमें व्यक्ति यानी वो तो प्रकट है या शक्ति है, उसके कारण इंद्रियों के द्वारा वो भले जाने जाए या नहीं जाने जाए, ग्रहता हो के न ग्रहता हो, तो पण ते वो ने वो जो गुण है वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्याय रूप परमाणु थी मांडीने, यानी एक द्रव्य ने परमाणु एक द्रव्य है उससे लेकर, यानी सूक्ष्म में सूक्ष्म वही है, अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंध सुधीना, यानी एक द्रव्यात्मक और अनेक द्रव्यात्मक, यानी द्रव्यों की मिली जुली पर्याय है, उसको कहा यहाँ अनेक द्रव्यात्मक, जो हम इसको कहेंगे स्कंद। तो स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंद सुधीना सर्व पुद्गल ने अविशेषपणे विशेष गुणों तरीके हो, यानी वो सूक्ष्म एक परमाणु हो या बड़े बड़े स्कंद हो, सब में सामान्य तरीके से स्पर्श रस गंध वर्ण उनके सबके ये विशेष गुण है। अविशेषपणे विशेष गुण है क्या, सभी परमाणु से लेकर स्कंदों तक सबके लिए सामान्य पने, यानी सब में पाए जाते इसलिए सामान्य पने, और ये अन्य द्रव्यों में नहीं है इसलिए इनके विशेष गुण है।
इस बात पर से एक बात सिद्ध होती है कि जो पृथ्वी जो बताया उन्होंने, पृथ्वी का स्कंद
स्थूल स्थूल तक लिया,
मैंने क्या कहना है कि हम जो मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी का एक कण कण जो है उसमें भी असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का वो स्कंद है अनंत, और उसमें पृथ्वी का एक जीव भी अनेक होंगे।
हाँ, पृथ्वी का एक जीव असंख्यात होते हैं। हमने जो इसी से इस सूक्ष्म सूक्ष्म सबसे भेद, जो पुद्गल का सबसे सूक्ष्म भेद है वो है परमाणु, और बड़ा कौन सा है, स्थूल स्थूल। जिस महास्कंदों को भूल जाओ, स्थूल 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 की व्याख्या क्या है, परिभाषा याद है, स्थूल स्थूल स्कंदों की परिभाषा। हाँ वही वो इसकी परिभाषा है। हाँ पहले पहले जैसे जुड़ नहीं जाते। हाँ एक तो हाथ से उठा के ले जा सकते हैं एक बात, और फिर दो उसके टुकड़े हो जावे तो जुड़ते नहीं है, पूर्ववत नहीं होते, पूर्ववत नहीं होते, ये है स्थूल स्थूल की परिभाषा। अभी वो उसमें पहाड़ से लेकर रोटी लोगों, ये तो छोटा आईलैश जिसको कहेंगे उसके टुकड़े हो जाए पर तो जुड़ नहीं सकते, ये सारे क्या है, स्थूल स्थूल। स्थूल में किसको लेना, स्थूल नहीं नहीं स्थूल स्थूल हो गए वो। हाँ और हाँ द्रव पदार्थ, तो उसकी परिभाषा क्या है, जो जुदे तो होते हैं परंतु फिर से पूर्ववत पूर्ववत हो जाते हैं। हम उसको नहीं, जैसे कोई भी प्रवाही है, तेल है दूध है पानी है, जैसे नदी के बीच में कोई ब्रिज आता है तो ऐसे प्रवाह ऐसे तो फिर एक जैसे हो जाते हैं, ये हो गया स्थूल। हाँ यानी वो तो सेकंड नंबर, तीसरा नंबर स्थूल सूक्ष्म। हाँ उसको क्या कहेंगे, छाया प्रकाश वगैरह धूप, वो हम उठा के नहीं ले जा सकते कहीं, ये भी उसका एक लक्षण है, हम देख सकते चक्षु इंद्रिय के द्वारा। फिर सूक्ष्म स्थूल आंखों से नहीं दिखेगा, अन्य चार इंद्रियों के द्वारा जाने जाते, हवाएं नहीं, ठंड ठंडी लगी आपको, हवाएं ठंडी हवा ऐसा कहते हैं, तो दिखती तो नहीं है, अन्य इंद्रिय आवाज है कर्णेन्द्रिय के द्वारा ख्याल में आ रहे हैं, वो क्या है सब सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा हमें सुगंध दुर्गंध उसको जानते हैं, वो भी क्या है, वो क्या स्कंद सारे कैसे सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्वाद सभी, यानी स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, इनके द्वारा जो ग्रहण होते हैं उसको हमने सूक्ष्म स्थूल कहा। फिर सूक्ष्म कारमाण वर्गणा, ये कर्म कहो कारमाण वर्गणा कहो, ये क्या है सारे सूक्ष्म, और सूक्ष्म सूक्ष्म में उससे भी छोटे स्कंद, जिसको कहने दो परमाणु से लेकर आगे तक ऐसे। हाँ पुद्गल के भेद कहेंगे तो सिंगल परमाणु, और स्कंदों के भेद कहेंगे तो दो परमाणु। अब ये द्रव्यात्मक लिया ना, तो यहाँ तो पुद्गल के भेद किया, एक द्रव्यात्मक पुद्गल और अनेक द्रव्यात्मक स्थूल स्कंद। सर्व पुद्गल ने अविशेषपणे विशेष गुणों तरीके होए छे, पृथ्वी स्कंद जो है ना वो तो हमने जो अभी भेद देखे थे, पहला तो सॉलिड था दूसरा लिक्विड था इस तरह से, हाँ स्थूल स्थूल में गया, यानी सबके लिए विशेष गुण कॉमन है सब में, अने तेओ मूर्त होवाने लीधे, तेओने गुणों मूर्त होवाने लीधे, क्योंकि वो पुद्गल मूर्त है तो उसके गुण भी मूर्त है, પૂદગલના સિવાયના બાકીના દ્રવ્યોને નહીં વર્તતા હોવાથી અને અન્ય દ્રવ્યોમે નહીં પાય જાતે પૂદગલને જણાવે છે. એ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ કિસકો બતા રહે હૈ, કિસકો પ્રસિદ્ધ કરે તો પૂદગલ કો. શબ્દ પણ ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય હોવાથી, અભી એ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ તો ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય હૈ, પરંતુ વે હૈ ગુણ. તો કોઈ એસા કહેંગે શબ્દ ભી ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય હૈ, વો ભી ગુણ હોના ચાહીએ. તો એ કહે રહે શબ્દ પણ ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય હોવાથી ગુણ હશે એમ શંકા ન કરવી. લિખાય ને સ્પષ્ટ. હા આગે હે કે થેન્ક યુ. એ શબ્દ કો અલગ લિયા ના તો કહેતે વો ગુણ નહીં હૈ, કારણ કે વો કે બરાબર નહીં આયા. તેને શબ્દ વિચિત્રતા વડે, વિચિત્રતા કારણે અનેક વિવિધતા વિશ્વરૂપપણું દર્શાવતો હોવા છતાં, વિશ્વ કા ભી અર્થ હોતે અનેક પ્રકાર કા, વિશ્વરૂપપણું દર્શાવતો હોવા છતાં અને અનેકાનેક પ્રકારપણું દર્શાવતો હોવા છતાં દિખાતે હોતે હુએ તેને અનેક દ્રવ્યાત્મક પૂદગલ પર્યાય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. શબ્દને પર્યાય નહીં માનતા ગુણ માનવામાં આવે તો તે કઈ રીતે યોગ્ય નથી તેનું સમાધાન. ક્યોંકિ ઇતની શબ્દો કે ઉપર ચર્ચા કરને કી ક્યા જરૂરત હૈ? કોઈ અન્ય મતી વો આકાશ કા ગુણ એસા કુછ માનતે હૈ શબ્દ કો? નહીં, વો તો કોઈ કિસી દર્શન મે હૈ એસા?
આકાશ વાણી બોલતે ના
વો આરા. અરે કુછ નહીં, અપન કિસી કે એસે તત્વ હૈ ના અન્ય મતીઓ કે કહી કહી માનતે હૈ શાયદ. અભી મુજે એક્ઝેક્ટ યાદ નહીં ઉનકી માન્યતા, પણ હૈ એસા. દેખો યહાં તો સમાધાન કરતે હૈ કે ગુણ અગર માનેંગે તો વો બરાબર નહીં હૈ, દોષ આયેગા. પ્રથમ તો શબ્દ અમૂર્ત દ્રવ્યોનો ગુણ નથી, કેમ કે ગુણગુણીને અભિન્ન પ્રદેશપણું હોવાને લીધે તેઓ ગુણગુણી એક વેદનથી વેદ્ય હોવાથી અમૂર્ત દ્રવ્યને પણ શ્રવણેન્દ્રિયના વિષયભૂતપણું આવી પડે. દેખો ક્યાં કહેના ચાહે આપ કહેંગે શબ્દ જો હૈ વો અમૂર્ત દ્રવ્ય કા ગુણ નહીં હૈ. ક્યો નહીં હૈ? તો એ તો શ્રવણેન્દ્રિય કા વિષય તો એ માલુમ હૈ, શબ્દ હમકો કર્ણેન્દ્રિય કે દ્વારા જાના જાતા હૈ. હા, તો કહેતે અગર હમ અમૂર્ત દ્રવ્ય કા વો ગુણ અગર માનેંગે તો ગુણ ઓર ગુણી અભિન્ન હોતે, ગુણ ઓર દ્રવ્ય અભિન્ન હૈ, પ્રદેશ અભિન્ન હૈ ઉનકા. हमने जो अतत भाव देखा था वो भाव की अपेक्षा देखा था, पर द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा से अभिन्नपना है. तो गुण गुणी ने अभिन्न प्रदेश पर हुवाने लीधे तेवो ने गुण भी और गुणी भी एक वेदन थी वेद्य हुआ थी, वेद्य ने जानने में आवे ऐसा. जैसे हमने देखा था ना कि जो स्पर्श जो है गुण है वो स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा जाना जाता है, वैसे शब्द को अगर गुण मानेंगे तो, और किसका द्रव्य गुण माना? अमूर्त द्रव्य का. तो शब्द इंद्रिय कर्णेन्द्रिय के द्वारा जाना जाता है तो अमूर्त द्रव्य भी कर्णेन्द्रिय के द्वारा जाना जाता है ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि अमूर्त द्रव्य तो अनिंद्रिय बताया था, इंद्रिय ग्राह्य नहीं ऐसी बात आई थी.
हेलो हेलो
क्या कहते हैं यहाँ पर?
दूसरी लाइन से लेता हूँ.
शब्द अमूर्त, फिर पढ़ती हूँ मैं. शब्द अमूर्त द्रव्यों नो गुण नथी, केम के गुण गुणी ने अभिन्न प्रदेश पणु हुवाने लीधे, गुण और गुणी एक ही प्रदेश में रहते, गुण गुणी एक वेदन थी वेद्य हुआ थी, यानी दोनों भी एक ही इंद्रिय के द्वारा जाने जाएंगे, गुण भी और गुणी भी. अमूर्त द्रव्य ने पण, जैसे शब्द जो है वो श्रवणेन्द्रिय ने कर्णेन्द्रिय के द्वारा जाना जाता है, और अगर हम अमूर्त द्रव्य का वो गुण मानेंगे तो अमूर्त द्रव्य भी कर्णेन्द्रिय के द्वारा जाना जाए ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए कहते अमूर्त द्रव्य ने पण श्रवणेन्द्रिय ना विषयभूतपणु आवी पड़े, यानी वे भी श्रवणेन्द्रिय के विषय हो जावेगे, यानी कर्णेन्द्रिय के द्वारा हमें अमूर्त द्रव्य जानने में आ जावे, ऐसी बात है। बीजू हाँ शब्द में पर्याय ना लक्षण वड़े गुणनु लक्षण उत्थापित थतु होवाथी शब्द मूर्त द्रव्य नो गुण पण नथी। क्या कहते हैं पर्याय ना लक्षण वड़े गुणनु लक्षण उत्थापित थतु होवाथी, जैसे हमने देखा ना स्पर्श की पर्याय है कौन सी, हल्का भारी मान लेते हैं या कोई भी ठंडा गर्म, तो वो तो पर्याय है, उसके द्वारा गुण गुण ख्याल में आता है, स्पर्श गुण ख्याल में आता है। यहाँ क्या लिखते हैं पर्याय ना लक्षण वड़े गुणनु लक्षण उत्थापित थतु होवाथी, यानी वो गुण भी जानने में आता है। तो शब्द मूर्त द्रव्यों नो गुण पण नथी, पर्याय नु लक्षण कादाचितपणु एने अनित्यपणु छे अने गुणनु लक्षण नित्यपणु छे। क्या कहते हैं अभी हल्का भारी ठंडा गरम रूखा चिकना ये क्या है, कभी कभी होगे ना, हल्का हो या भारी होगा ठंडा होगा या गरम होगा, तो कादाचित पना है उसका अर्थ क्या, कभी कभी होगे, पर हल्का भी स्पर्श है और भारी भी स्पर्श है, ठंडा भी स्पर्श है और गरम भी स्पर्श है, स्पर्श तो कायम है, पर्याय बदलेगी स्पर्श गुण तो कायम रहेगा ये कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है पर्याय नु लक्षण कादाचित पणु यानी अनित्यपणु छे, अलग अलग पर्याय होती है ना, जैसे वर्ण की अलग अलग हरे रंग है पीला है काला है, तो एक ही चीज का उसकी पर्याय बदलने उसके कलर बदलते हैं, वर्ण वर्ण कायम है पर वर्ण की पर्याय बदलती रहती है, अने गुणनु लक्षण नित्यपणु छे, यानी जो हमने वो अलग अलग गुणों के जो पर्याय जानी थी, स्पर्श गुण की कितनी पर्याय होती है उमाबेन मालूम है आपको, स्पर्श गुण की पर्याय आठ बोलो, हल्का भारी रूखा चिकना हाँ कड़ा नरम और ठंडा गरम, हाँ ये किसकी पर्याय है स्पर्श गुण की, परमाणु की किस कंध की, स्कंध की, परमाणु में क्या कितनी होगी स्पर्श की, अकेले स्पर्श की बताओ हाँ कौन सी जुगल और रूखा चिकना रुक्ष और स्निग्ध, हल्का भारी और कड़ा नरम ये स्कंधों की है, परमाणु में तो मात्र दो युगल उसमें आइदर आउट होगा, स्पर्श के एट ए टाइम दो पर्याय होगी किसमें परमाणु में और स्कंदों में चार होगी, हल्का भारी में से एक, रूखा चिकना में से एक, ठंडा गर्म में से एक, कड़ा गर्म में से एक, ये स्कंद के लिए सिंगल परमाणु होगा तो उसमें केवल ठंडा या गर्म और रूखा या चिकना दो ही युगल, युगल यानी जोड़ी उसमें से एक एक होगा, यानी स्पर्श की दो पर्याय होगी, रस की कोई भी एक एट ए टाइम एक ही होगी, वर्ण की एक गंध की एक, इस तरह से अन्य तीन और ये दो पांच होगी हाँ। और बाकी में स्कंदों में परमाणु में पांच, स्कंद में स्पर्श की चार होती है और अन्य तीन हो जाएगी, ख्याल में है ना हाँ सात। यहाँ क्या कह रहे हैं गुण निरक्षण नित्य पणुचे माटे शब्द मा, ये सब हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी पर्याय कौन से गुण की कौन सी पर्याय है, क्योंकि ये पर्याय के द्वारा ही हमको गुण ख्याल में आ रहा है। माटे शब्द मा कादाचितपणा वड़े नित्यपणु उत्थापित थतु होवाथी, अर्थात शब्द कोई क्वार थतो होवाथी अने नित्य नहीं होवाथी शब्द ते गुण नथी, जे त्या नित्यपणु छे ते तेने एटले शब्द ने उत्पन्न करनारा पुद्गलोनु अने तेमना स्पर्शादि गुणोनु छे, शब्द पर्यायनु नहीं एम अति दृढ़पणे ग्रहण करवो। क्या कहना चाहते हैं, ये अटपटी भाषा है, थोड़ी कठिन लगती है ना। फिर से पढ़ते तीसरी लाइन से, जैसे हमने क्या देखा था, पर्याय कादाचित कहें, गुण नित्य है। अब कहते हैं शब्द भी कादाचित कहें, कदाचित होते हैं, तो वहां कोई नित्य अलग चीज होनी चाहिए। कादाचित यानी कभी कभी होते, जैसे पर्याय कहे अनित्य है, वैसे ही शब्द भी तो कायम शब्द नहीं हो रहे ना, अलग अलग शब्द अलग अलग हो रहे हैं, कभी होते कभी नहीं होते है। यानी शब्द कोई कुमार तो हुआ थी अने नित्य नहीं हुआ थी, शब्द ते गुण नहीं। जैसे हमने देखा था हल्का भारी वो गुण नहीं है, वो पर्याय है, और स्पर्श है वो गुण है, और स्पर्श गुण नित्य है। वैसे शब्द भी कभी कभी होती है, इसलिए शब्द वो गुण नहीं है, क्योंकि गुण होता तो हमेशा होना चाहिए, तो शब्द कभी कभी होता है ना, वो पर्याय होने चाहिए। अब वो गुण की पर्याय नहीं है, वो तो द्रव्य की पर्याय, यानी वहां द्रव्य कोई कायम रहने वाली कोई अलग चीज होनी चाहिए, इसलिए पर्याय नक्की कर रहे। देखो फिर से, शब्द कोई कुमारज थतो हुआती यानी नित्य नहीं हुआती, शब्द ते गुण नहीं। वो गुण क्यों नहीं है, क्योंकि गुण नित्य होता है और शब्द नित्य नहीं पाया जाता। जे त्या नित्यपणु छे ते तेने उत्पन्न करनारा, देखो जो नित्य ये तो शब्द है ना, उत्पन्न हुआ है तो उसको उत्पन्न करने वाली चीज नित्य चीज कोई अलग होनी चाहिए। तो एक गुण उस शब्द को नहीं उत्पन्न कर रहा है, शब्द किसी गुण की पर्याय नहीं है, वो द्रव्यों की पर्याय है। तो कहते तेने उत्पन्न करनारा पुद्गलोनु, अनेक पुद्गल हो ना, पुद्गलोनु अने तेमना स्पर्शादि गुणोनु छे, यानी अनेक पुद्गलों की वो पर्याय है जिसको हम द्रव्य पर्याय कहेंगे, और वो पुद्गलों में स्पर्शादि गुण तो है ही, शब्द पर्याय नु नहीं एम अति दृढ़पणे ग्रहण करूं। यानी नित्यपना जो है वो शब्द पर्याय का नहीं है, उसके बना उससे जिससे वो उत्पन्न हुआ है शब्द, उन पुद्गलों का नित्यपना है। ये ख्याल में आई ना बात यहां तक? देखो ये कैसे उन्होंने न्याय से सिद्ध किया, लॉजिक से सिद्ध किया। वड़ी ये सब उसकी शब्द के बारे में ही बात चल रही, जो शब्द पुद्गल नो पर्याय हो तो पृथ्वी स्कंदनी जेम ते स्पर्शनादिक इंद्रियों विषय होवो जोइए। अर्थात जेम पृथ्वी स्कंद रूप पुद्गल पर्याय सर्व इंद्रियों थी जणाय छे, तेम शब्द रूप पुद्गल पर्याय पण सर्व इंद्रियों थी जणावो जोइए, एम तर्क करवामां आवे तो एम पण नथी। कारण के एने कोई कोई दलील करता है ना, और उसको रूल आउट करेंगे वो। कोई क्या कहता है, जो पृथ्वी स्कंद जो है वो तो स्पर्शनादिक इंद्रियों विषय छे, यानी जो कोई भी सॉलिड चीज है तो स्पर्श से भी हम जानते हैं, उसका कोई गंध भी होगा तो इस तरह से जाने जाते हैं। तो उसके लिए उत्तर क्या देते हैं, देखो एम तर्क करवा मावे तो, क्योंकि तर्क हमारे तर्क चलेगी ऐसा नहीं, वस्तु का स्वरूप जो होता है वो अपने तर्क के गोचर नहीं होता है। स्पेशली हमेशा हमेशा हम कर्णानुयोग में कहते हैं, आप तर्क से अपने बुद्धि से कोई नया सिद्धांत वहां घटित करने की कोशिश मत करो, जो आगम में लिखा है उसके कारण ढूंढने की आप कोशिश कर सकते हैं, पर अपने मन से कोई अन्य अन्यथा सिद्धांत मत बनाओ। यहाँ क्या कहते हैं, दलील क्या हुई उन्होंने कि शब्द यदि पुद्गल का पर्याय होगी तो पृथ्वी स्कंद जैसे सभी इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है वैसे इसको भी होना चाहिए। तो उसके लिए उत्तर क्या दे रहे हैं, नीचे से चौथी लाइन एम पण नथी। पहले दलील समझ में आई, फिर से देखो यहां शब्द क्या है उसको घटित कर रहे हैं, अन्य जो स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय है वो अनित्य है, और उसमें नित्य रहने वाला स्पर्श गुण है वो नित्य है, वैसे शब्द भी अनित्य है वो कायम तो नहीं है, तो वहां नित्य चीज कोई दूसरी होनी चाहिए, इससे जो पुद्गल है वो नित्य है। दूसरा प्रश्न क्या उठाया कि शब्द यदि पुद्गल का पर्याय हो गई, पुद्गल की पर्याय होगी तो पृथ्वी स्कंध की, पुद्गल की पर्याय नहीं द्रव्य पर्याय, अनेक पुद्गलों की मिली जुली पर्याय ऐसा होता है तो जो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पृथ्वी स्कंद का अर्थ क्या है, जो कोई चीज है, तो उस स्पर्श से भी जानी जाती है, गंध से, वर्ण से, रस से। तो कहते वो स्पर्शनादिक इंद्रियों का विषय होवो जोइए, यानी दो चार इंद्रियों का विषय होना चाहिए। अर्थात जेम पृथ्वी स्कंद रूप पुद्गल पर्याय, पुद्गल पर्याय ने स्कंद, अनेक पुद्गलों की पर्याय, द्रव्य पर्याय लेना यहाँ पर, सर्व इंद्रियों थी जनाय छे, तेम शब्द रूप पुद्गल पर्याय पण सर्व इंद्रियों थी जनावो जोइए, ऐसा किसी ने तर्क किया, प्रश्न उठाया, तो उसके लिए कहते एम पण नथी। कारण के पानी पुद्गल पर्याय हुआ छता, ये जो पानी जो है हमने देखा ना, पहला तो स्थूल स्थूल साहब, ये स्थूल वो भी पुद्गल पर्याय है, यानी क्या है, समान जाति द्रव्य पर्याय तो है ना, स्कंद है, तो पानी ये स्कंद है, फिर भी ग्रहण इंद्रिय नो विषय नथी। अग्नि पुद्गल पर्याय होवा छता ग्रहण इंद्रिय तथा रसने इंद्रिय नो विषय नथी, अने पवन पुद्गल पर्याय होवा छता ग्रहण इंद्रिय रसने इंद्रिय तथा चक्षु इंद्रिय नो विषय नथी। यानी पुद्गल पर्याय होगा तो वो सभी इंद्रियों के द्वारा जाना जाए ही, ऐसी बात नहीं है। वड़ी एम नथी के पानी गंध विनानु छे, तेथी नाक थी अग्राह्य छे, अग्नि गंध तथा रस विनानु, इसका अर्थ ये नहीं है हाँ कि पानी में गंध ही नहीं है, गंध बिना का ऐसा नहीं है, वो व्यक्त नहीं है। अग्नि गंध रस विनानु छे ऐसा तो है ही नहीं है, क्योंकि जहाँ एक गुण है वहां तो सभी गुण होते ही होते। हमने देखा स्पर्श रस गंध वर्ण, व्यक्ति हो या शक्ति हो, एक परमाणु से लेकर पृथ्वी स्कंध तक सब में पाए जाते हैं। क्या कहा, ऐसा नहीं है, क्या नहीं है कि पानी में गंध नहीं है, ऐसा नहीं है, अग्नि में गंध रस नहीं है, ऐसा नहीं है, विनानो छे तेथी नाक तथा जीभ थी अग्राह्य छे, अने पवन गंध रस तथा वर्ण विनानो छे तेथी नाक जीभ तथा आंख थी अग्राह्य छे। कारण के अभी कारण बता रहे, यानी कोई ऐसा मानते हैं तो उसमें है ही नहीं, गंध ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सर्वपुद्गलो, सर्वपुद्गल पहले ही बताए थे, एक एक परमाणु से लेकर एक द्रव्यात्मक बताया था उन्होंने, सर्वपुद्गलो स्पर्शादि चतुष्क सहित, ये चतुष्क क्या होता है वीरेश भाई, स्पर्शादि चतुष्क है नहीं, कौन सा, चार गुण स्पर्शादि चतुष्क, स्पर्श रस गंध वर्ण, क्या कहते, सर्व पुद्गलो स्पर्शादि चतुष्क सहित स्वीकार में आया छे। पहले बताया था उन्होंने कि परमाणु से लेकर एक द्रव्य से लेकर अनेक द्रव्यात्मक पृथ्वी स्कंध तक सबको लिया था, ये उन्होंने रूल बताया कि सर्व पुद्गलो स्पर्शादि चतुष्क सहित स्वीकार में आया छे। तो कर्म कौन सा द्रव्य है, हाँ कौन सा द्रव्य, छह द्रव्य में से पुद्गल द्रव्य, तो उसमें कौन सा कलर होगा, पक्का, हाँ अच्छा, हाँ तो पुद्गल है तो उसमें ये स्पर्शादि चतुष्क होने ही चाहिए, क्योंकि हमने देखा वो तो विशेष गुण है। तो कहते सर्व पुद्गलो स्पर्शादि चतुष्क सहित स्वीकार में आया छे, यानी होते ही होते हैं, वो तो स्वीकार में आए, केम के जेमने स्पर्शादि चतुष्क व्यक्त छे, व्यक्त की बात है, चारों जिसको व्यक्त है, एवा चंद्रकांत ने, यानी चंद्रकांत मणि, अरणी ने, अने जीव ने,
जव ने,
सॉरी 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 जव ने, अग्नि है ना, अरणी
अरणी यानी वो होता है ना जिसके ऊपर वो ठोकते हैं,
अग्नि है, अरणी अग्नि का नाम है, अरणी अग्नि, अग्नि के लिए अरणी शब्द आता है,
ये गुजराती लोग बताएंगे, आपके घर में अरणी नहीं है,
देखो देखो आगे पढ़ेंगे तो ख्याल में आएंगे, अरणी का अर्थ अग्नि होता है। चंद्रकांत ने, अरणी ने, अने जव ने जे पुद्गलो उत्पन्न करे, जिन पुद्गलों से वो उत्पन्न हो रहे हैं, તેજ કૂતકરો વડે જેને ગંધ અવ્યક્ત છે એવા પાણીને, જેને ગંધ તથા રસ અવ્યક્ત છે એવા અગ્નિને, અરણી સે અગ્નિ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. મેરે ખ્યાલ સે અગ્નિ હો તો ચકમક પથ્થર, ચકમક પથ્થર અરણી કા, અરણી કી અગ્નિ હોતી ને, ચકમક પથ્થર કહેતે. હા હા, देखो चंद्रकांत मणि से क्या है, उसमें पाझरता है तो लिक्विड हो जाता है उसका, तो उससे पानी, पृथ्वी स्कंद था उससे पानी बना, उसमें व्यक्त था वो अव्यक्त हुआ. यहाँ क्या कहते हैं कि जिसमें, देखो पृथ्वी स्कंद को सभी व्यक्त है, स्पर्श रस गंध वर्ण सभी व्यक्त है, परंतु लिक्विड में जो हमने कहा तो उसमें गंध अव्यक्त होगा. अभी पहले में तीन नाम लिए ना, कौन से, चंद्रकांत मणि, जैसे हम कहें कोई नमक की डल्ली है, नमक की डल्ली है फिर वो तो लिक्विड होता है उसका, हमने देखा ना. हाँ, तो उसका सॉलिड है उसका लिक्विड हो जाता है. हाँ, तो चंद्रकांत मणि है. दूसरे अरणी यानी वो पत्थर होते हैं जिससे अग्नि होती है. हाँ, वो अरणी. और जव जे पुद्गलो उत्पन्न करे छे तेज पुद्गलो वड़े, किसकी उत्पत्ति होती है, जेने गंध अव्यक्त छे एवा पाणी ने, यानी चंद्रकांत मणि से वो पानी झरता है, यानी वो तो लिक्विफाई होता है ना. उसकी अरणी से क्या होता है, जेने गंध तथा रस अव्यक्त छे वा अग्नि नी उत्पत्ति होती है. अने जव के द्वारा क्या होता है, जेने गंध रस तथा वर्ण अव्यक्त छे. अभी वायु कौन सा, उदर वायु, नहीं समझे, वो पाचन होता है तो गैस तैयार होती है ना, ये गैस तैयार हुई. पहले पृथ्वी नी सॉलिड था, ये सब तीनों सॉलिड थे, कौन से, चंद्रकांत मणि भी, अरणी भी, पत्थर भी और जव भी, ये क्या है, सॉलिड चीज है. चंद्रकांत मणि से लिक्विड यानी पानी जैसा तैयार हुआ, अरणी से वो अग्नि उत्पन्न हुई, और जव यानी जो अनाज हम खाते हैं उससे वो गैस तैयार होती है. तो जो गैस है यानी वायु है उसमें गंध रस और वर्ण अव्यक्त है. पहले पृथ्वी टाइप था यानी सॉलिड था, तब उसमें चारों व्यक्त थे, अब वही टर्न हुआ है तो उसमें तो कुछ अव्यक्त हो गए, कुछ व्यक्त है, यानी वो जो देखने में आते हैं. वड़ी, क्योंकि सभी वो स्पर्शादि चारों ही व्यक्त हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है. वड़ी क्या है, कहने कोई पर्याय मां कोई गुणनु कादाचित कर परिणाम ने विचित्रता ने कारणे थतु. क्या कहते हैं, गुण तो सभी में नित्य है, परंतु उसकी जो परिणाम यानी पर्याय, पर्याय कैसे, कादाचित कहे, कभी कभी हो. क्या कहते, फिर से पढ़ते, वड़ी कैंक यानी किसी पर्याय में, कोई पर्याय में, कोई गुण यानी किसी गुण का, स्पर्श हो रस हो या गंध वर्ण, ये चार में से बात है, तो किसी गुण का कादाचित का परिणाम यानी वो पर्याय, किसी गुण की कभी कभी पर्याय होगी, वो व्यक्त की बात है ना. उसकी विचित्रता ने कारण उसमें अनेकता पाई जाती है, थतु उसके कारण होने वाला व्यक्तपणु के अव्यक्तपणु, वो कभी व्यक्त भी हो या अव्यक्त, जो अभी ऊपर के उदाहरण में उन्होंने बताए थे. नित्य द्रव्य स्वभावनो प्रतिघात करतु नथी. क्या कहते हैं, कोई गुण पर्याय में व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से परिणमता है, परंतु उसके कारण द्रव्य का जो नित्य स्वभाव है उसका घात नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता. अर्थात अनित्य परिणाम ने लीधे थती गुणनी प्रकटता ने अप्रकटता. परिणाम यानी पर्याय अनित्य है, और वो द्रव्य गुण में जो शक्ति वो कभी व्यक्त होती कभी अव्यक्त रहती है, परंतु उसके कारण द्रव्य का, द्रव्य अनित्य नहीं हो जाता. द्रव्य कैसा है, नित्य स्वभाव है, तो द्रव्य का नित्य स्वभाव है, तो नित्य द्रव्य स्वभाव साथे काई विरोध पामती नथी. माटे शब्द पुद्गल नो पर्याय ज हो. अब हम, अरे अभी जैसे ना चरखी टीका पढ़नी, ये लंबी टीका हुई, पर बिल्कुल बेसिक विषय है ना, उसमें कोई बहुत कठिन बात तो है नहीं. उनकी जो अटपटी भाषा लगती है उनको कठिन लगती है. अब पेज नंबर 74 पर है जैसे नाचार्य की टीका. 73 पर वो अमृतचंद्राचार्य की संस्कृत है, उनकी संस्कृत एकदम गरिष्ठ है, इसलिए हम उनकी तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं। अब 74 पृष्ठ पर जो है वो जयसेनाचार्य की टीका। एवं ज्ञानादि विशेष गुण भेदेन द्रव्य भेदो भवति इति कथन रूपेण द्वितीय स्थले गाथा द्वयम् गतम्। इस तरह से ज्ञानादि विशेष गुण, जीव है इसलिए उसको ज्ञान की विशेष गुण, पुद्गल में स्पर्श रसानंद, हर एक द्रव्य के अपने अपने विशेष गुण जुदे जुदे हैं, तो ज्ञानादि विशेष गुण के भेद से द्रव्यों का भेद होता है, इस कथन रूप से दूसरे स्थल में दो गाथाएं गई। अथ अब मूर्त पुद्गल द्रव्यस्य गुणान आवेदयति, यानी मूर्त पुद्गल द्रव्यों के गुणों को बताएंगे, आवेदन करना कहते ना, यानी कथन करना। वर्ण रस गंध फासा विज्यन्ते पोग्गलस्य, वर्ण रस गंध स्पर्शाः विद्यन्ते, वर्ण रस गंध स्पर्श विद्यन्ते ने होते हैं, पाए जाते हैं, कस्य किसके, पुद्गलस्य पुद्गल के, कथम भूतस्य वो पुद्गल कैसा है, कैसे पुद्गल को वो पाए जाते हैं, कितने सुहुमादो पुड़वी पर्यंतस्य य, पुड़वी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम्म परमाणु छव्य भेयम भणियम पोग्गल दौवम जनवरे हिम, जो अभी हमने वो स्थूल स्थूल की चर्चा की थी ना, उसी के ये छह नाम है। देखो पहला कौन सा लिया, पुड़वी, वो स्थूल स्थूल वाला, फिर जल वो स्थूल, छाया अभी फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक एक नाम लिया उन्होंने, छाया होती है धूप होता है, ये कौन सा है, स्थूल सूक्ष्म, फिर चौर इंद्रिय विषय, चार इंद्रियों के विषय, छाया तो चक्षु इंद्रिय का विषय था, ये अन्य चक्षु को छोड़कर चार इंद्रियों के विषय है, वो कौन से हुए, सूक्ष्म स्थूल, और फिर कम्म परमाणु, कर्म जो है, कम्म परमाणु नहीं लेना, कम्म एक अकेला लेना और परमाणु को लास्ट में रखना, यानी एक नंबर पर क्या लिया, पृथ्वी, दो नंबर पर जल, तीन नंबर पर छाया, चार नंबर पर चौरिंद्रिय विषय, फिर कम्म पांच नंबर पर और परमाणु छह नंबर पर। छव्य भेयम, ये छह प्रकार के भेद, विह ने भेद विध, छह विध भेयम भेदम, यानी चार प्रकार के भेद भणियम कहे है, पोग्गल दौवम पुद्गल द्रव्य के ये छह प्रकार के भेद बताए है, जिनवरेहिम जिनेन्द्र भगवान ने बताए। इति गाथा कथित क्रमेण, इस गाथा में जो बताए है क्रम से बताए है, परमाणु लक्षण सूक्ष्म स्वरूपादेहे, यानी परमाणु जिसका लक्षण है उस सूक्ष्म स्वरूप से लेकर, स्वरूप आदे है यानी वहां से लेकर पृथ्वी स्कंद लक्षण स्थूल स्वरूप पर्यंतस्य च, यानी सबसे सूक्ष्म परमाणु है, पुद्गलों में सूक्ष्म परमाणु है और सबसे स्थूल है वो पृथ्वी भेद वाला जो है, इसलिए पृथ्वी कहने में आता है। तथा ही वही इस प्रकार है, यथा अनंत ज्ञानादि चतुष्टयम विशेष लक्षण भूतम यथा संभवम सर्व जीवेशु साधारणम, तथा क्या कहते हैं, जिस प्रकार अनंत ज्ञानादि चतुष्टय विशेष लक्षण भूत सभी जीवों में पाया जाता है, साधारण है ना, साधारण सभी में सामान्य तरीके पाया जाता है, तथा उसी प्रकार वर्णादि चतुष्टयम विशेष लक्षण भूतम यथा संभवम सर्व पुद्गलेशु साधारणम, यानी इसे सभी जीवों में अनंत ज्ञानादि चतुष्टय उसके विशेष लक्षण भूत पाए जाते हैं, वैसे ही सभी पुद्गलों में वर्णादि चतुष्टय, वर्णादि चतुष्टय ने वर्ण रस गंध स्पर्श, यहाँ वर्ण से शुरू किया ना इसलिए वर्णादि कहा, और वहां पर बात स्पर्शादि वाली, उसमें भी वही बात थी, तो वर्णादि चतुष्टय विशेष लक्षण भूत जो ऐसे वर्णादि चार बातें हैं वर्ण रस गंध स्पर्श, वो भी सभी पुद्गलों में साधारण यानी सामान्य से सभी पुद्गलों में पाए जाते हैं। यथैव च जिस प्रकार अनंत ज्ञानादि चतुष्टयम् मुक्त जीवे अतीन्द्रिय ज्ञान गम्यम आगम गम्यम च, जो अनंत ज्ञानादि चतुष्टय, तो अनंत ज्ञानादि चतुष्टय में किसको लेना है? हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, उसको कहा अनंत ज्ञानादि चतुष्टय। तो यहाँ क्या कहते हैं, जिस प्रकार अनंत ज्ञानादि चतुष्टय मुक्त जीवे, मुक्त जीव में अतीन्द्रिय ज्ञान गम्यम, अतीन्द्रिय ज्ञान से जाने जाते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है, और कैसा है आगम गम्यम च, आगम से भी जाने जाते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान से भी जाना जाता है और आगम से भी हम जान सकते हैं। यथा वा, दूसरा उदाहरण देते, अथवा जिस प्रकार अनंत चतुष्टयस्य संसारी जीवे रागादि स्नेह निमित्तेन कर्म बंधवशात अशुद्धत्वं भवति, तथा क्या कहते हैं, अभी ये जो अनंत चतुष्टय बताए, कौन से ज्ञानादि अनंत चतुष्टय, वो उसका संसार जीव में रागादि स्नेह निमित्तेन, ये कौन सा ऑयल लगाया है, चिकनाई जो है ना, स्नेह रागादि, तो रागादि की जो जिसको कहेंगे, वो पहले समय सार में उदाहरण आता है ना, हाँ, तो बहुत ये मिट्टी वाली जमीन थी अखाड़े में, तो बहुत औजार थे उसके, इसलिए उसके बंद नहीं हो रहा है, बहुत व्यायाम कर रहा है इसलिए उसको मिट्टी नहीं चिपक नहीं लेते, क्यों, तो उसने तेल का मर्दन किया है इसलिए उसको मिट्टी चिपकती। वैसे जिसके रागादि रूप स्नेह है उसके निमित्त से,
स्नेह स्नेह लिखना है क्या, नेह लिखना है
तो संसारी जीव में रागादि स्नेह जब उसके निमित्त से कर्म बंध वशात, कर्म बंध के वश होकर अशुद्धत्वं भवति, अशुद्ध होता है, कौन, अनंत चतुष्टय अशुद्ध पाए जाते हैं, तथा उसी प्रकार वर्णादि चतुष्टयस्य अपि, वर्णादि चतुष्टय का भी स्निग्ध रुक्ष गुण निमित्तेन, ये स्निग्धता वहां रागादि के लिया, यहाँ स्निग्ध रुक्ष तो गुण लिया, कंपेयर करना है ना, उसका उदाहरण बताना था, तो कहते पुद्गल में भी क्या होता है, स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण स्निग्ध रुक्ष गुण, हम कहेंगे तो स्पर्श गुण है, पर हमेशा हमने देखा था अनेक जगह पर्याय को भी गुण कहने की पद्धति है, हमने नियम सार में भी देखा था ना, मति ज्ञान वगैरह को विभाव गुण कहा था, और केवल ज्ञान जो है स्वभाव गुण कहा था, वो पर्याय को गुण कहते हैं, तो यहाँ स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण है ना, उसकी पर्याय स्पर्श गुण की पर्याय, उसके निमित्त से द्विअणुकादि बंध अवस्थायाम अशुद्धत्व, क्या कहना चाहते हैं, ये अशुद्धता कैसे आ गई इसमें, हाँ नेहा बिन, यहाँ क्या उदाहरण क्या दिया, अनंत चतुष्टय है संसारी जीवों के रागादि निमित्त से कर्म बंध के वश होकर अशुद्धत्व पाया जाता है, यानी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वगैरह की अशुद्धता पाई जाती है, अभी वैसे ही वर्णादि चतुष्टय की भी अशुद्धता होती है, क्यों, स्कंद स्निग्ध रुक्षता के कारण वो स्कंद रूप परिणमता है, परमाणु में भले वो लाल कलर है परमाणु का, और वैसा ही लाल कलर स्कंद का रहेगा, फिर भी स्कंद में वो तो अशुद्ध पर्याय कहलाएगा, उसको विभाव कहेंगे, क्योंकि उसके पर्याय कुछ ऐसा नहीं कि परमाणु में वो कलर कुछ अलग होते हैं और स्कंद के कुछ अलग, ऐसा नहीं है, वही जो काला पीला लाल सफेद वगैरह वो तो परमाणु में भी होगा स्कंद में भी होगा, जब स्कंद में वो पाया जाता है तो उसको अशुद्ध कहेंगे, उसका विभाव पर्याय कहेंगे उसको, ये कह रहे यहाँ पर, उस स्निग्ध रुक्ष गुण के निमित्त से द्वि अणुकादि, यानी दो अणु से लेकर, अभी अनंत अनंत अणुओं का स्कंद हो सकता है, तो द्व्यणुकादि बंध अवस्थायाम, यानी बंध अवस्था में, यानी स्कंद रूप अवस्था में अशुद्धत्वम, यानी जो वर्णादि चतुष्टय वर्णादि जो गुण है उनके अशुद्ध स्कंद जो है, पुद्गल का जो स्कंद है उसमें उसकी अशुद्ध पर्याय पाई जाती है, ये कहना चाहते हैं। यथा वा, ये हो गया ना, नहीं और दूसरे यथा बताएं, जैसे अथवा जैसे अनंत ज्ञानादि चतुष्टयस्य रागादि स्नेह रहित शुद्धात्म ध्यानेन शुद्धत्वं भवति। यानी जैसे अनंत ज्ञानादि चतुष्टय के रागादि स्नेह रहित, कौन सा स्नेह यहाँ लिया, रागादि स्नेह, मैंने रागादि की चिकनाई नहीं रही वहां पर, तो रागादि स्नेह रहित शुद्धात्म ध्यान, शुद्धात्मा के ध्यान से शुद्धत्वं भवति। यानी अनंत चतुष्टय बिल्कुल शुद्ध रूप से प्रकट होता है। तथा उसी प्रकार वर्णादि चतुष्टय से अपि, वर्णादि चतुष्टय का भी स्निग्ध गुणा भावे बंधने असति, यानी स्निग्ध गुण के अभाव में, स्निग्ध गुण यानी स्निग्ध वृक्ष दोनों समझना, उसके अभाव में बंधन नहीं होने पर, असति लिया ना, बंधने सत्य यानी बंध होने पर, यहाँ बंधने असति लिया यानी बंधन नहीं होने पर परमाणु पुद्गल अवस्थायाम शुद्धत्वम इति, यानी परमाणु की, परमाणु रूप जो पुद्गल है वो उसकी शुद्ध अवस्था, यानी वर्णादि चतुष्टय की जो शुद्धता कब कहेंगे, जब वो परमाणु सिंगल परमाणु है, हाँ उसकी जो पर्याय है वो शुद्ध कहलाएगा, यही कह रहे। स्निग्ध गुण अभाव है ऐसा क्यों कहा, वो तो जघन्य कहते ना, एक गुण वह, हाँ वो किसी के साथ बनता नहीं है, बनता नहीं है तो परमाणु तो उसकी पर्याय शुद्ध कहलाती है, ये कहना चाहते हैं। सहो सो पोगलो, ऊपर के वर्णन से जनते पोगलस्य सुमादो पुढ़वी पर्यंतस्य यो सहो सो पोगलो यस्तु शब्दः सो पौद्गलः, यानी जो शब्द है वह पुद्गल है। यथा जीवस्य नर नारकादि विभाव पर्यायः तथा अयम शब्दः पुद्गलस्य विभाव पर्यायो न च गुणः, यानी जैसे नर नारकादि विभाव पर्याय, जीव के नर नारकादि विभाव पर्याय है, वैसे ही शब्द पुद्गल की विभाव पर्याय है, उसका गुण नहीं है। कस्मात् क्यों, गुणस्य अविनश्वरत्वात् अयम च विनश्वरो, गुण के अविनश्वरपना पाया जाता है, यानी गुण नित्य है और ये शब्द विनश्वर है, अनित्य है, नाश पामते हैं। नैयायिक मतानुसारी कश्चित वदति आकाश गुणो अयम शब्द, मैंने बोला ना कोई मान्यता है इसे आकाश का गुण है। देखो नैयायिक मत के अनुसार कश्चित वदति, कोई कहता है आकाश गुणो अयम शब्द, शब्द ये आकाश का गुण है, ऐसे मान्यता वाले है। परिहारम आह, उसका परिहार करते हैं, यानी उसको रूल आउट करते हैं, निराकरण करते। आकाश गुणत्वे सति अमूर्तो भवति, अगर आकाश का गुण मानेंगे तो उसको शब्द को अमूर्त मानना पड़ेगा। अमूर्तश्च श्रवणेन्द्रिय विषय न भवति, और अमूर्त द्रव्य उनके श्रवणेन्द्रिय का विषय नहीं हो सकता। दृश्य न भवति दृश्यते च, श्रवणेन्द्रिय विषय न भवति दृश्यते च श्रवणेन्द्रिय विषयत्वम्। क्या कहते, अमूर्तिक होता तो श्रवण इंद्रिय का विषय नहीं होता, परंतु श्रवण इंद्रिय का विषय होता हुआ दिखाई देता है। दृश्यते च श्रवण इंद्रिय विषयत्वम्, उसका श्रवण इंद्रिय का विषयत्वपना दिखाई दे रहा है, हमें तो खास समझ में आ रहा है, उन शब्द को हम तुम सुनते हैं, यानी वो अमूर्तक तो नहीं हो सकता है, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वो अमूर्तिक नहीं हो सकता। शेष इंद्रिय विषय कस्मात् न भवति इति चेत्, कोई पूछता है शब्द जो है वो अन्य इंद्रियों के द्वारा क्यों नहीं जाना जाता, ख्याल में है ना प्रश्न, तो शब्द को कोई वर्ण होगा कि नहीं होगा, स्मेल होगा कि नहीं होगा, ये कह रहे अन्य विषयों के द्वारा, इंद्रियों द्वारा क्यों नहीं जाना जाता। अन्य इंद्रिय विषयों, अन्य इंद्रियस्य न भवति वस्तु स्वभावात् एव रसादि विषयवत्। क्या कहा, समझ में आई बात, हाँ बोलो कर जी। देखो देखो एक ही शरीर के पांच इंद्रिया है, अभी सुनकर बहुत कंटाल आया, हाँ। तो नाक को बताया जरा, तू सुन ले, होगा कि नहीं होगा, अरे पढ़ के आंखें इतनी थक गई, कान को बता दिया, अभी जरा पढ़ने का काम चालू कर। तो एक इंद्रिय अन्य इंद्रिय का विषय नहीं है, यानी एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को नहीं जान सकता। ये फिर पढ़ते इसको देखो कि जो इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय का विषय है, पूछा क्या था, अन्य इंद्रियों के विषय क्यों नहीं होता है, तो कहते अन्य इंद्रिय विषय अन्य इंद्रियस्य न भवति वस्तु स्वभावात्, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि अन्य इंद्रिय का विषय कोई अन्य इंद्रियों के द्वारा वो उसका जाना नहीं, वो उसका विषय नहीं हो सकता। आपको शायद मालूम होगा मति ज्ञान का दूसरा नाम क्या मालूम है, हमारी लक्ष्मी कहेगी अभिनिबोधिक ज्ञान। अभिनिबोधिक क्या, अभी यानी अभिमुख होकर, इंद्रिया कैसी जानती है, मति ज्ञान का क्या है, इंद्रिया और मन के द्वारा जानता है, तो इंद्रियों के द्वारा जानता है तो उसमें क्या होता है, अभिमुख यानी इंद्रिया अपने अपने विषय के सन्मुख होकर ही जानती है, ये पीछे का क्या चल रहा है वो आंखों से नहीं जाना जाता है, तो अभिमुख होकर अभी नि यानी निश्चित अपने विषय को ही जानेगी, अन्य इंद्रिय के विषय को नहीं जानेगी, भले एक ही शरीर के पांच इंद्रिय, वो एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं करेगी, वो वस्तु तो गुण में आता है ना, हम लेते हैं हमेशा। हाँ तो अभिनी होगा, अभिनी बोध, बोध है ना ज्ञान, यानी इंद्रिया कैसी है, सन्मुख होकर उसके अपने विषय के सन्मुख होकर जानती है, नियमित अपने निश्चित विषय को जानती है, अन्य इंद्रियों के विषय को नहीं जानती है, और वो जो ज्ञान होता है उसको यहाँ मति ज्ञान कहते हैं, हमेशा करना नहीं होगी में उसको अभिनिबोधिक ज्ञान ऐसा कहते हैं। यहाँ क्या कहते देखो कि शब्द जो है अन्य विषयों के द्वारा क्यों नहीं जाना जाता, क्योंकि तो एक इंद्रिय का विषय दूसरे इंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो दूसरे इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता, ऐसा ही वस्तु स्वभाव है, और वस्तु स्वभाव आपके क्यों प्रश्न के लिए कोई बाध्य नहीं है उसका उत्तर देने के लिए। रसादि विषयवत, जैसे रस विषय है वो रसनेन्द्रिय का ही विषय है, तो रसनेन्द्रिय का विषय रस है, वो खट्टा मीठा वो स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा नहीं जाना जाएगा, वो आंखों से खट्टा है कि मीठा है नहीं समझेगा। पुनरपि कथम हुआ है, कथम भूत और कैसा है शब्द जो है, और कथ करना उसको, कथम भूत और कैसा है शब्द, चित्तो यानी चित्र है, यानी अनेक प्रकार का है, भाषात्मक अभाषात्मक रूपेण, अभी उसमें शब्दों में क्या है, भाषात्मक और अभाषात्मक, जैसे अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भी कहते हैं ना उसको, प्रायोगिक वैश्लेषिक रूपेण, प्रायोगिक क्या होता है वैश्लेषिक क्या होता है, प्रायोगिक प्रयोग यानी किसी वो तो आदमी नहीं जो कोई वाद्य है या कोई है तो, और वैश्लेषिक है नेचुरल स्वाभाविक, जो मेघ गर्जना वगैरह जो है वो वैश्लेषिक होता है। रूपेण च नाना प्रकार है, प्रायोगिक के भी हमने भेद सीखे थे, याद है क्या, अभी हो गए समय, तत अतत वितत घन वगैरह, हाँ ये कई अलग अलग वाद्यों के कैसे आवाज होते हैं ना, तो वो उसमें भी और बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। तच्च वही सद्दो, सद्दो ने शब्द, सद्दो खंदप्पभवो इत्यादि गाथायां पंचासी काये व्याख्यातम तिष्ठति अत्र अलम प्रसंगे न, यानी शब्द है जो स्कंद से उत्पन्न होता है, खंदप्प भवो ऐसी जो गाथा है पंचासी काय में वो शब्द के बारे में, वो स्कंद से उत्पन्न होता है ऐसी बात आई हुई। अब कहते कि तिष्ठति व्याख्यातम तिष्ठति, वहां वो बताया गया है, अत्र अलम यानी यहाँ अभी बस, ये कहते हैं अलम यानी भी बस हो जाओ, क्योंकि अभी हमारे घंटा पूरा हो गया इसलिए कह रहे अत्र अलम प्रसंगे न। अब कल हम गुरुदेव का प्रवचन पढ़ेंगे, कहाँ है पेज नंबर 77 पर, वहां से शुरू करेंगे कल। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो हो, सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो। नरेंद्र